हम बात नहीं कर सकते। ये मसला कि मैं पिछले दो ढाई साल हो गए हैं मैं पाकिस्तान आया हूँ, कोई 16-17 साल के बाद बाहर रह के, तो जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये नजर आ रही है कि पाकिस्तानी माशरा बतौर माशरा पहले से ज्यादा कंजर्वेटिव हो चुका है, अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो चुका है, और लोगों में एक विक्टिम मेंटेलिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। उसकी बहुत सारी अंदरूनी और बैरूनी वजूहात हैं, और हम अपने मसाइल का जो 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 हमारी प्रॉब्लम्स है उसको हम बाहर देखते हैं, और अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म का बहुत शदीद कमी है। मेरे नजदीक पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत को इस बात का एहसास ही नहीं है, या वो उसको कंप्रिहेंड नहीं कर पा रहे कि ये मसला बहुत संजीदा है, और ये जो हमें उसकी चीजें नजर आती हैं दहशतगर्दी की फॉर्म में या टैक्स की फॉर्म में, ये सिम्टम्स हैं बड़ी सतह पर मसले के, और उसमें माइंडसेट है। कोई हुकूमत, कोई सिक्योरिटी इदारा, कोई एक एजेंसी इसको नहीं टैकल कर सकती जब माशरा बहसीत से माशरा इस कदर संजीदा मसाइल से दोचार हो, जहाँ पर लोगों की अक्सरियत उस सोच से, मैं ये बड़े इत्मीनान से कह रहा हूँ, कि सोच से इत्तेफाक करती है, जिस सोच की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ की कोई सिस्टम नहीं है रहा, गवर्नमेंट और प्राइवेट और उसका कोई सिस्टम नहीं बना, इसलिए मशरूम ग्रोथ हुई है तालीमी इदारों की। प्राइवेट सेक्टर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले छोटे घरों में लोगों ने स्कूल और कॉलेज बना दिए हैं, केजीएम में 64,000 स्कूल बताए जाते हैं। कौन सी हुकूमत या इदारा इनको सिक्योरिटी फराहम करता है?
मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाह रहा था। आपने कहा कि आपका तजुर्बा बाहर की दुनिया में रहा है, ये शायद किसी भी मुल्क के लिए, तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए भी मुमकिन ना हो कि वो स्कूलों को बड़ी कंप्लीट सिक्योरिटी दें, लेकिन सरकारी इदारों की सिक्योरिटी वो तो एक मसला है, प्राइवेट इदारों की हद तक तो ये बात बज़ाहिर समझ में आती है और गालबन दुरुस्त भी हो कि आप उनको तो बाउंड कर सकते हैं कि वो सिक्योरिटी दें, बिकॉज वो एक बिजनेस इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो वहाँ से अर्न कर रहे हैं और अपनी एंटिटीज़ की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, तो जब उनको रेगुलेट करने की बात आएगी तो सिक्योरिटी भी एक कंपोनेंट के तौर पर वहाँ पर उसको फोर्स किया जा सकता है आपके ख्याल में?
देखिए ये ऐसा कहा भी जाता है, लेकिन पाकिस्तान देखिए ना बहुत सारी चीजों को जो सीधे साधे आम जिंदगी के भी मसाइल होते हैं उनको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। और मैं गवर्नमेंट के साथ भी यहाँ पर भी पिछले दो साल में काम कर चुका हूँ, अभी एक यूनिवर्सिटी के लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि सेंस ऑफ ऑनरशिप और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों में इसलिए नहीं है कि शायद वो खुद को डिटैच समझते हैं, इनडिफरेंस है, रकम ज्यादा है। आप मीडिया में देखें, आप अखबार में देखें, आप पॉलिटिक्स में देखें, दावे और बयान बहुत ज्यादा है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें, जैसे मैं कह रहा था, बड़े लेवल पर मसला ये है कि सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया गया है, तो ये चूंकि जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये तो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, इसलिए आपने कुछ करना कराना नहीं है, और आप बैठ के दूसरे के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, ये कर रही हैं। अब इदारों में आप देखें, बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर जो हमला हुआ और उसमें जो रद्द अमल आया और उसमें जो जो ग्राउंड पे जो हुआ उसमें खैबर पख्तूनख्वा ये मर्दान की पुलिस ने बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया इस बुरे हालात में भी, कि इंकरेजमेंट एप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन उनको उसका उसका क्रेडिट नहीं दिया गया,
क्रेडिट का वो शेयर नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं,
कंपटीशन है कि कौन क्रेडिट लेगा।
सही, डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, हमारा रब्ता पहले मुनकता हो गया था। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम बात करें स्कूलों की सिक्योरिटी पर, बड़ी कम्प्लेक्स सूरतहाल इस रेफरेंस में है कि अगर हुकूमत स्कूल बंद करे तो तनकीद है, अगर हुकूमत सिक्योरिटी ना दे पाए तो तनकीद है, लेकिन सिक्योरिटी देना लाखों की तादाद में स्कूलों को, ये भी बज़ाहिर प्रैक्टिकली अमली तौर पर यह नज़र नहीं आता, और अगर वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत तलबा या असातिज़ा को बंदूकें दी जाएँ या उनको सिक्योरिटी पर मामूर किया जाए तो इस पर भी सख्त तनकीद है, क्या हो सकता है आपके ख्याल में?
देखिए, जहाँ तक मजदूर लेने का सवाल है उससे तो मसला हल नहीं होता, बल्कि बेलमों के पास असाजा के पास बंदूकें नहीं होनी चाहिए।
सही।
मैं बहुत अच्छे से ये कह रहा हूँ मीडिया पे भी और तहरीर में भी कि असल मसला है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये जरूरी होती है आपकी लोगों का हौसला बुलंद करना और दुश्मन का हौसला जो है उसको कमजोर करना, उसका हमारे यहाँ अमल दखल नहीं है।
सही।
ये स्कूल बंद करने से यकीन क्या हौसला बुलंद होगा, और पाकिस्तान के अवाम का हौसला जो है वो कमजोर होगा।
सही, लेकिन डॉक्टर साहब मैं कहता कलामी की माफी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं काउंटर क्वेश्चन जरूर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे भी तो हौसले पस्त होते हैं, अगर आपके स्कूल में बच्चों को खून में नहला दिया जाए, हमला आवाराएं बेदर्दी से कत्ल करके चले जाएं, इससे भी तो डिमोरलाइज होती है कौम भी और इवन सिक्योरिटी फोर्सेज भी।
देखिए बात ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो मसला है जल्दी का पाकिस्तान में, ये माइंड सेट तब्दील नहीं होगा, इसके लिए एक लंबे प्रोग्राम है। हमारे यहाँ रिलीजियोसिटी इतनी बढ़ गई है
सही
कि हर चीज में जो इंतहा पसंद है उन
प्लानिंग चाहिए होगी, तवील मुद्दत पॉलिसी चाहिए कि इसको थोड़ा नेशनलाइज करने को सोसाइटी को, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या हो, जो एक थ्रेट सामने खड़ी है जो बिल्कुल जानलेवा है और जो बच्चों को टारगेट कर रही है, हदफ बना रही है, उसके लिए हल क्या हो?
इसका हल ये है कि बजाय माफखाना पॉलिसी इख्तियार करने के, हुकूमत को उनको तलाश करके जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक तहरीक चलानी चाहिए और उनको कसर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं आपको
जी,
63 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनपे पाबंदी लगाई है हुकूमत ने, लेकिन उनके वर्कर्स, उनके लीडर, उनके बयान मीडिया पे और उनके इश्तहार, ये सब कुछ जारी है। और मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगी थी पाकिस्तान में, तो उनके वर्कर्स और उनके लीडर जो हैं वो कई कई साल तक जेलों में रहे और उनके ऊपर सीआईडी लगी रही। ऐसा कोई काम इन तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं किया गया। इनके वर्कर्स भी रिहा हैं, उनके लीडर्स भी रिहा हैं, वो बयान भी दे रहे हैं, मीडिया उनको कवर भी करता है खबर के हवाले से कि शायद ये खबर है। ये सब हिस्सा है नफ्सियाती जंग का, दुश्मन को किस तरह आप डिमोरलाइज करते हैं और अपने लोगों का हौसला कैसे बुलंद करते हैं।
सही
बात यह है कि बंदूकों से ये मसला हल होने वाला नहीं।
सही जी शिराज बराजा साहब, आपका भी नुक्ता नज़र आलमोस्ट वही है जो डॉक्टर मेडिसन साहब ने कहा कि बंदूक से ये मसला हल होने वाला नहीं है, लेकिन जो हल आपने भी तजवीज़ किया और मेडिसन साहब ने भी, वो यकीनन दुरुस्त हो सकता है, लेकिन तवील मुद्दती एक अमल का हिस्सा है। ये जो फौरी चैलेंज है, इसका हल क्या निकाला जाए? ये जो टीचर्स विद गन्स का कॉन्सेप्ट है, मुझे इस वक्त वो एग्जैक्ट रेफरेंस तो याद नहीं होगा, लेकिन ये कहते हैं कि इंग्लैंड में और यहाँ तक कि अमेरिका में बहुत माजी की कोई हवाला दिया जाता है जिसमें इस नौयत की तरबियत फ्राहम की गई असातिज़ा को भी कि वो सेल्फ सिक्योरिटी और तलबा की सिक्योरिटी के लिए कुछ कर सके हैं। तो आपके ख्याल में ये एक्शन, खासतौर पे केपी के अंदर हमें ज़्यादा ये इमेजेस आते हैं जिसमें टीचर्स के पास बंदूकें हैं, यहाँ तक कि अगर वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं तो उनके उन्होंने उसको कॉलर किया हुआ है गन को, तो इसकी क्या, आपके ख्याल में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या ये हिकमत अमली अच्छी है या गलत है आपके ख्याल में?
मेरा ख्याल ये है
शिराज प्राजा साहब,
ये अच्छा
जी प्राजा साहब से ये सवाल फिर आपसे, मैं गन के हवाले से खास तौर पे आपके पास आता हूँ।
इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ इस हद तक करूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर जब पाबंदी लगाई और रियासत ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के पीछे पाकिस्तान के लोग या अवामी मकबूलियत उन्हें हासिल नहीं थी। वो तो पहले ही उस वक्त के अवाम की नजरों में वो जो थे कोई मकबूल पार्टी नहीं थी। यहाँ जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं, आपके लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है उनसे किसी न किसी हवाले पर, किसी न किसी लेवल के ऊपर उनसे हमदर्दी रखती है। लोग ये समझते हैं कि ये मजहबी लोग हैं, ये मजहब को फॉलो करते हैं, और मजहबी लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारे अक्सर लीडर ये बयान देते हैं कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो कोई और लोग हैं, मुसलमान कोई ऐसा कर नहीं सकता। तो इनके खिलाफ जो सख्त एक्शन लेना हुकूमत के लिए इसलिए मुमकिन भी नहीं क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है या फोर्स है और उसका हुकूमत को तमाम लोगों को एहसास है और इनके हिमायती मीडिया में भी बैठे हुए हैं, तालीमी इदारों में भी बैठे हुए हैं। جہاں تک آپ نے یہ کے بی کی مثال دی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، میں ذاتی طور پر اس مثال کو اچھا نہیں سمجھتا، میں نہیں دینا چاہتا، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں روایتی طور پر خیبر پختونخوا میں اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر سمجھا جاتا تھا تو اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ٹریڈیشنلی کلچرلی لوگ اپنے پاس اسلحہ ہر گھر میں رکھتے ہیں، گن کلچر یہاں پر ایک کلچر کا حصہ ہے، تو وہ کوئی کسی کے خلاف جرم کرتے ہوئے اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے گھر سے کوئی مقابلہ کرنے کو ملے گا۔ تو یہاں پر ابھی ہماری یونیورسٹی میں بھی لوگ ویپنز لے کر آ رہے ہیں، اور وہ ایک مثال ہمیں دی گئی کہ جی کیسے اگر آپ 2000 لوگوں کے پاس اسلحہ ہو اور چار دہشت گرد یا چار لوگ میم آئے آپ پر ملیٹنٹ اٹیک کریں تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک کلچر کا بھی سائڈ ہے خیبر پختونخوا میں، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں پہ گن کلچر جو ہے سب کا گن جو ہے وہ کلچر کا حصہ رہی ہیں، اگرچہ میں اسے اتفاق اس سینس میں نہیں کرتا۔
جی ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی شاہ صاحب نے بھی، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پی، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے، اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور شیراز پراچا صاحب پروفیسر ایٹ مردان یونیورسٹی۔ سید محمد علی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہم بات کر رہے ہیں اسکولوں کی سیکیورٹی کی، یا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ پی گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ کا آپ وابستہ ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس، کیونکہ اس پہ بھی تو تنقید ہے کہ آپ اساتذہ کو کتاب قلم کا سبق یا درس دینے کی بجائے اگر آپ ان کو بندوق پکڑائیں گے، اس کی تربیت دیں گے، اور آگے وہ تربیت بچوں میں منتقل ہوگی، تو ایک طرح سے سوسائٹی کو ملٹرائز کرنے کا بھی کانسیپٹ سامنے آتا ہے، تو آپ کے پاس کیا چیلنجز ہیں، آپ اس کو حل کیسے کرنا چاہیں گے یا کر رہے ہیں؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ ایز اے سیکیورٹی وائز صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں ناکام ہے جی اسکولوں کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو سیکیورٹی دینے میں۔ اس سے یہ بات نہیں بنتی کہ ہم فنڈ دیں باؤنڈری والس کے لیے یا چار دیواری کو اوپر کرنے کے لیے، مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے اسکولوں میں، ایک چوکی دار ہے جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ایک اسکول کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے جی، تو ٹوٹلی ناکام ہے صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل
گورنمنٹ۔ اگر ہم اگر یہ تصور کریں، فرض کر لیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، مکمل اختیار کل ہے آپ کے پاس، آپ کیا کریں گے؟
جی دیکھیں، یہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹوٹلی صوبائی گورنمنٹ کا جورسڈکشن میں آتا ہے جی، تو اسکولوں کے لیے کوئی سیکیورٹی کا پلان نہیں۔ ہماری پرائرٹیز میں فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی لا اینڈ آرڈر جی، جب تک لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ پھر ناکام ہوگا، تو پرائرٹی فکس کرنی چاہیے، فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی لا اینڈ آرڈر، امن و امان کا مسئلہ
ٹھیک ہے، لیکن امن و امان ڈیفینیٹلی، لیکن اسکول، اگر اسکولوں کی تعداد کے پی کے اندر دیکھی جائے تو کم و بیش 1 لاکھ تو ہوگی، کیا خیال ہے؟
بالکل ہوگی، بالکل، میں یہ میں نہیں کہتا کہ اسکولوں کی تعداد کم ہے یا
تو کیا، اور ہر اسکول پہ اگر آپ اوسطن 3 یا 4 گارڈز اگر آپ رکھیں گے،
میری بات سنیے، میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ اسکولوں کی تعداد کافی زیادہ ہے جی، ابھی باؤنڈری وال کی ضرورت مجھے نہیں ہے، فار ایگزامپل، میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں
جی،
اور دوسری اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے، تو میں کیوں اس میں پیسے لگاؤں؟ فرسٹ، میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پرائیورٹی فکس ہونی چاہیے، اور فرسٹ پرائیورٹی شوڈ بی لا اینڈ آرڈر، امن و امان کا مطلب پہلے ہونے چاہیے۔ میں کمرہ بناتا ہوں، میں باؤنڈری وال کی اونچائی بڑھاتا ہوں یا اس پہ باب وائر لگاتا ہوں، تو اس سے ٹھیک ہے فائدہ ملتا ہے، مگر مین چیز یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی پر زور دینا چاہیے جی۔ ابھی ایک چوکی دار، میں آپ سے یہ کوشچن کرتا ہوں، ایک چوکی دار 24 گھنٹے ایک اسکول میں ڈیوٹی دے سکتے ہیں؟
نہیں، وہ تو ناممکن ہے، اور اگر دے بھی رہا ہو تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی تربیت کتنی ہے، وہ پروفیشنلی ایکٹیو کتنا ہے۔ آپ سے آخری میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا، تو آپ کے پی کی حکومت کو یا پارلیمنٹ کے اندر اس نوعیت کے سوال اٹھاتے ہیں، کیا جواب ملتا ہے، کیا تجویز آپ کی طرف سے جاتی ہے یا باقی پارٹیوں کی طرف سے؟
دیکھیں جی، ہم نے ہمیشہ امن و امان کے بارے میں، میں سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال جو ہمارے اسمبلی میں ہوئے، سب سے زیادہ بحث امن و امان پہ ہوا یہ، مگر کوئی رزلٹ ابھی تک، آج تک اسمبلی کے میں جتنے فلور پہ ہم نے باتیں کی ہے، جتنے ہم نے قراردادیں لائی امن و امان کے بارے میں، جتنے اسکولوں کے، کالجز، یونیورسٹی کے بارے میں ہم نے جو بچوں کے تحفظ کے لیے جو بات کی ہے, میرے خیال میں 1% بھی اس پر آج تک عمل نہیں ہوا.
صحیح ڈاکٹر مہدیسن صاحب, ہم اس سیگمنٹ کو وائڈ اپ کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کیا یہ ایک حل ہو سکتا ہے کہ اسکول جس ایریا میں ہیں تو کمیونٹی کی سطح پہ والنٹیئرز کی جو کیمپینز ہوتی ہے, رضاکار تیار کیے جاتے ہیں, اس تصور کو ذرا بہتر کیا جائے تاکہ کم از کم اس وقت تک, اگر جب ہم یہ سوچیں جن جانب آپ نے اشارہ کیا ہے یا شیراز براجہ صاحب نے, کہ ایک وقت آئے کہ اگر بہت بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں سوچ میں بھی, اپروچ میں بھی, اور معاشرے کی تشکیل نو میں, تب تک کوئی جو رضاکار ہیں وہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں, معاون ہو سکتے ہیں, اس کمیونٹی کے لوگ خود اسکولوں کی حفاظت کریں.
دیکھیے یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر اس طرح کریں, مگر میرا خیال یہ ہے کہ دیواریں اونچی کرنے سے یا خاردار تار لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے لوگوں کا, یہ ایک لمبی لڑائی ہے. اور جہاں تک سیکورٹی کا تعلق ہے, میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ ٹیچرس کو یا طالب علموں کو اسلحہ دیا جائے, وہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی لڑائی ہے, اور اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ میڈیا کو بھی استعمال کرنا پڑے گا, اور عوام کو باقاعدہ ان کی تربیت کرنی پڑے گی. ہاں البتہ اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں ان کو حفاظت کے لیے اپنی وہ تربیت ہو کہ اگر حملہ کرے کوئی دہشت گرد تو ان کو کس طرح اپنی جان بچانی چاہیے, یہ تربیت ضروری ہے. اور یہ تربیت عام جنگ کے زمانے میں بھی دی جاتی ہے, جب دشمن حملہ کرتا ہے کہ اگر حملہ کرے تو آپ کیسے اپنی بچت کر سکتے ہیں.
جی شیراز براچہ صاحب, الٹرنیٹیوز رضاکار اور سیلف ڈیفنس کی تربیت, یہ مؤثر ہو سکتی ہے کم از کم ایک ایسے ویپن کے طور پہ جب تک آپ کوئی بڑا حل تجویز نہیں کر لیتے, سوسائٹی کو آپ ایک طرح سے نئے سرے سے اس کی تشکیل نہیں ہو جاتی ہے. جی راجہ صاحب,
ریلیجیوسٹی کو ختم کرنا ضروری ہے, وہ اگر ناپسند ہو لوگوں کو, لیکن حل یہی ہے اس کا, ریلیجیوسٹی جتنی بڑھ گئی ہے, کیونکہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جو لوگ حملہ کرتے ہیں وہ ان کا اسلام سے یا مذہب سے تعلق نہیں ہے, وہ یہ سمجھ کے حملہ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے عام آدمیوں سے بہتر مسلمان.
Exactly. اور انہوں نے جی ابھی انہوں نے جو اپنا بیانیہ دیا ہے, ان کا جو بیان آیا ہے, سٹیٹمنٹ آیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسکول ہیں, پہلے چونکہ خاص طور پہ ایک اگریشن یا ایک نفرت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان گروپوں کے خلاف خاص طور پہ پیدا ہوئی جب انہوں نے بچوں کو ہدف بنایا, تو اب انہوں نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ جی یہ تو اللہ کے نظام کے خلاف نرسریز ہیں, لہٰذا ہم اس کو ہدف بنائیں گے, تو انہوں نے اس کے لیے ایک منطق گھڑنے کی کوشش کی ہے. شیراز براچہ صاحب, پروفیسر شیراز براچہ صاحب, آپ اس کو سم اپ کیجیے گا. اگین وہی جو میں نے سوال کیا, رضاکار سوسائٹی, اس کا کنٹریبیوشن کیا حال ہوگا, عرضی حال کیا ہے؟
دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ کہ یہی سمجھنے کمپریہینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسے دشمن یا ایسی قوت جس سے آپ کا جو خود اپنے آپ کو مار دینے سے تلا ہو نا جی, جو آپ پر حملہ کر کے کوئی آپ کو مارنے نہیں آ رہا, وہ پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر کے آتے ہیں. یہ اتنا پاورفل ہے سینٹیمنٹ اور آئیڈیالوجی اور ایکشن کہ اس کا مقابلہ آپ کو بہت مشکل ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, حفاظتی فوج کھڑی کر دیں یا لوگ کھڑے کر دیں, جب بندہ خود مرنے سے تلا ہوا ہے, خود اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے, تو اس کا مقابلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کاغذ کو ڈھونڈے اور آنیسٹلی ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ تو دیکھیے, آپ نے 30 سال تک لوگوں کو کہا کہ یہ مجاہدین ہیں یا یہ ہماری کاسٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ دنیا میں جا کر ہمارے ایسٹس ہیں اور ہماری سپورٹ کر رہے ہیں, اور آل آف اے سڈن آپ نے یو ٹرن لیا اور اب آپ انہیں کو, ہمیں نہیں پتا کہ پہلے جو مجاہدین تھے وہ ٹھیک تھے یا غلط ہے, ہم تو سمجھتے تھے کہ غلط ہے, اور اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہر کسی کو یا کسی کو بھی آپ ایک بڑے برش کے ساتھ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں یا دشمن کہہ سکتے ہیں. اس پر ایک ٹرانسپیرنٹ اور اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشنز ہونی چاہیے, ہمیں یہ معلوم, یہ ہمیں فیئرنیس کے ساتھ ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہوئے جو بھی جنگ یا آپریشن ہو رہی ہے اس میں کہیں بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, کہیں بھی ایسے عمل نہیں ہونے چاہیے جس کا رد عمل بہت خوفناک پیدا ہو. یہ ٹرانسپیرنٹ ان جنگ ہو پاکستان کے لوگوں کو تو وی آر لائک سٹنگ ڈک, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون ہم پر حملہ کر رہا ہے, کون ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے, اسپون فیڈنگ کی جا رہی ہے میڈیا کی طرف سے اور بہت حلقوں کی طرف سے کہ یہ آپ کا کل تک کوئی آپ کا دوست تھا, آج وہ آپ کا دشمن ہو چکا ہے. اس پر ایک تو اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ڈیبیٹ ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے, اور دوسرا اس میں اوپر ہم نے کھلے عام یہ کہنا ہے اور بعض ایسی باتیں کہنی ہیں جو شاید سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہ کی جا سکے آسانی سے. انف از انف. اب آپ نے یہ جو بیانیے کی بات ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے کی, اس کو ذرا کھل کے بیان کرنا ہے. صرف بیانیاں بدلنے کے کیا دینے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر شیراز براجا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا مردان یونیورسٹی سے. ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, اور سید محمد علی شاہ صاحب چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے جنیوا مذاکرات میں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے شام کے اندر, شام کی صورتحال پہ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات. اقوام متحدہ ان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے اور شام کی حکومت کے نمائندے ان مذاکرات میں شریک ہیں. اطلاعات یہ تھیں اور طے شدہ پلان کے مطابق شام کے جو حزب مخالف کے گروپس ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کرنا تھی, جن کو ہائی نیگوسیشن کونسل قرار دیا گیا ہے اور جس کو سعودی عربیہ کی حمایت حاصل ہے, لیکن انہوں نے عین اس وقت پہ اس میں مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا ہے یا ابھی آمادہ نہیں ہے. لیکن یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑھیں گے وہ اس کا حصہ بنتے جائیں گے. ہائی نیگوسیشن کونسل کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات میں تبھی وہ شریک ہو سکتے ہیں جب شام کی حکومت اس ملک کے اندر, اس خطے کے اندر اپنی فضائی بمباری, فضائی حملے بند کرے. انالیسز ہم لیں گے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی عمران صاحب, واشنگٹن بیس جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے میگزین ویوز اینڈ نیوز اس کو اس کے پیٹرن چیف بھی ہیں. اور ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر فیضان حق صاحب, اسلامک کلچرل ہسٹری کے پروفیسر ہیں, یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کو وہ دیکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پہلے صرف ایک سوال جس کا ڈیڑھ منٹ کے اندر جواب چاہوں گا, پھر ہم ریڈیو اینڈ ٹی وی میں شفٹ ہوں گے. علی عمران صاحب, جنیوا ٹاکس کتنے آپ پر امید ہیں اس کے باوجود کہ یہ بڑی ایسے حالات میں شروع ہو رہے ہیں جب کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی غیر یقینی کسی صورتحال ہے اور اپوزیشن اس میں شریک بھی نہیں ہے؟
دیکھیں, یہ جو شام کے حالات چلتے آ رہے ہیں اس کے مطابق, کیونکہ اس میں مختلف پلیئرز ہیں بہت زیادہ, اور کانفلکٹس بھی جو ہیں وہ ملٹی لیئرڈ ہے اور ملٹیپل ہیں. اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی بہت ڈسپیرٹ ہے, اس کے اندر بہت ساری تنظیمیں شامل ہیں, اور ایسی مشکلات, یہ جو آج جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کا آغاز جو ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے, یہ اپوزیشن کی جو غیر موجودگی ہے اس بات کی غماز ہے کہ یہ پروسیس کتنا پیچیدہ اور مشکل ہوگا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ مختلف جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اپوزیشن کی, وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو شام میں رجیم ہے وہ پوری نہیں کرے گی, کیونکہ اس وقت وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ان کا اپر ہینڈ ہے, اور وہ جو بمباری کی جا رہی ہے روس اور سیریا کی فورسز کی طرف سے, تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ نیگوشیشنز میں جو شرکت کریں گے ان کا اپر ایک ہینڈ ہے. تو یہ ایک مشکلات جو ہیں, چیلنجز ہیں, یہ سامنے آتے رہیں گے, لیکن یہ بذات خود جو ہمیں معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کتنی مشکلات کے بعد ایک بہت ہی بڑے
اقوام متحدہ کی کیا مشکلات ہیں عمران؟ یہ چند سیکنڈ مجھے آپ دیجیے گا, ہم جاتے ہیں ریڈیو ٹی وی پہ شفٹ ہوتے ہیں, ہمارے سیٹلائٹ ویور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس کے بعد اس موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں جہاں رنگ اور میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں جنیوا کے اندر ہونے والے مذاکرات, جس میں شام کے کسی سیاسی حل یا شام میں امن کے قیام کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اقوام متحدہ ان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے اور شام کے حکومت کے نمائندے ان مذاکرات میں شریک ہیں. اپوزیشن نے اس میں شرکت کرنا تھی لیکن وہ ان مذاکرات میں شریک نہیں ہے. غیر یقینی کسی صورتحال بتائی جا رہی ہے جس میں یہ مذاکرات اب اس وقت شروع ہو چکے ہیں, مذاکرات جاری ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا اپوزیشن اس میں کسی مرحلے میں شامل ہوتی ہے یا نہیں. توقعات ضرور ہیں کہ وہ اس میں اس کا حصہ بنیں گی. سعودی عربیہ کی حمایت حاصل ہے اس اپوزیشن کے گروپ کو جس کو ہائی نیگوسیشن کونسل بھی کہا جاتا ہے. صدر بشار الاسد ان کے مخالفین پر مبنی اپوزیشن گروپ کے رہنما ان مذاکرات میں متوقع طور پر شرکت کر سکتے ہیں, لیکن تاہم ابھی تک جو سیشن جاری ہے اس کا وہ حصہ نہیں ہے. کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں؟ انالیسس کر رہے ہیں علی عمران ہمارے ساتھ ہیں, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں. پروفیسر فیضان حق صاحب ہمیں جوائن کریں, اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے پروفیسر ہیں, اور پروفیسر وقار احمد یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس سے وابستہ ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. علی عمران, آپ اپنی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں جس میں آپ بتا رہے تھے کہ ان مذاکرات کو ہوسٹ کرنے میں بذات خود اقوام متحدہ کے سامنے بھی کچھ مشکلات یا چیلنجز ہیں. وہ کیا چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں؟
مشکل ایک سفارت کاری جس میں کہ امریکہ نے خاص طور پہ اہم کردار ادا کیا کہ مختلف جو گروپس ہیں اور پلیئر ہیں اس کانفلکٹ میں ان کو ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لایا جائے. تو اب جب کہ وہ آگے ہیں تو اپوزیشن جو ہے جو کہ کل میرا خیال ہے ان کی سعودی عرب میں ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد انہوں نے کچھ ڈیمانڈس کی ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ جب تک پوری نہیں ہوں گی تو ہم اس نیگوشیشن پروسیس میں اس میں شرکت نہیں کریں گے. تو یہ یونائیٹڈ نیشنز کے لیے ایک تو دوسرا یہ ہے کہ معروضی جو صورت حال ہے وہاں پہ وہ بہت ہی ایک غیر یقینی ہے, اور ہیومینیٹیرین ایک کرائسس چل رہا ہے, ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, اور اس میں جو گولز رکھے گئے ہیں 18 ماہ کا جو یہ پروسیس ہے, ایک نیا آئین بنانا اور پھر ایک نئے الیکشن کروانا, وہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے. لیکن ابھی جو ابتدائی اسٹیج میں جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان تمام جو ڈسپیرٹ گروپس ہیں, اپوزیشن ہیں اور جو بشار الاسد کی ریجیم کے جو نمائندے ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ لایا جائے. آج جو کہ جنیوا میں یہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں تو ان کی طرف سے تو شرکت ہو رہی ہے کہ بشار الاسد کے جو بشر جعفری ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں ان کے مندوب ہیں وہ شرکت کریں, لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن گروپس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک وہاں پہ ہیومینیٹیرین جو آپریشنز ہیں جو کہ بیڈلی نیڈیڈ ہیں, اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ واقعی وہ اقوام متحدہ کی ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق 1.5 ملین لوگ یعنی کہ 15 لاکھ لوگوں کو ایمرجنسی ایڈ کی ضرورت ہے وہاں پہ, جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مشکلات ہیں اور ایڈ کانوائز جو ہیں وہ پہنچ نہیں پا رہے.
صحیح
جی ہاں, تو یہ ان کی ایک
چیلنجز ہیں. اس میں ایک بھارت یہ ہے کہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اقوام متحدہ کے جو امبیسڈر ہیں خاص طور پہ بندوب ہیں انگیج کرنے ہیں مسٹر دی مستورہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مذاکرات کو بہرحال ناکام نہیں ہونا چاہیے ہے. پروفیسر فیضان حق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بفلو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جنیوا ٹاکس آپ کی توقعات کیا ہیں؟ اپوزیشن اس میں ابھی شریک نہیں ہے تاحال اس ابھی تک کے مرحلے میں. جی فیضان حق صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی آپ اپنا انالیسز دیجیے گا پہلے جنیوا ٹاکس پہ جو شام کی صورتحال پہ ہو رہی ہیں. شام میں امن کا قیام مقصود ہے لیکن شام کی حکومت کے نمائندے تو شریک ہیں اقوام متحدہ اور باقی نیگوشیٹرز کے ساتھ, لیکن حزب اختلاف وہاں پہ موجود نہیں ہے.
جی اور میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو آخری وقت میں سیرین جو ریبلز ہیں انہوں نے ودرا کر لیا ہے, یہ بہرحال ایک نقصان دہ بات ہے ان اس گفتگو کے لیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کریڈیبلٹی جو ہے اس گفتگو کی متاثر ہوتی ہے. और उसमें उसमें है कि वो रेबल ग्रुप्स जो कि ना आइसिस का हिस्सा हैं और वो बशार अल असद के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ हैं, उनको बहुत बुरी तरह डैमेज किया गया है सीरिया की आर्मी की तरफ से और रशिया की तरफ से। उनके ऊपर जो हमने देखा अक्सर अमरीकी प्रेस पे तो ये बात बहुत आम थी और यूरोपियन प्रेस में भी ये बातें आई हैं कि उनको टारगेट किया गया, उन पे बमबारी की गई और उनके जो ठिकाने थे उन पर हमले हुए। और जो आइसिस जो है उसके साथ, बल्कि एक वक्त था कि रशिया के पास चॉइसेस थी तो वो रशिया ने चूज ये किया कि वो इनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाइयां करे और आइसिस के खिलाफ कम करे।
सही।
और ये बात जो है उनकी नाराजगी अपनी जगह है क्योंकि उनके पास, उनको किसी किस्म की गारंटी देनी होगी जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं जिसमें अमेरिका है, यूरोप है और सऊदी अरब के अलायंसेज हैं, कि अगर वो वहां पर जाएंगे तो उनका क्या क्या बात होगी। एक चीज होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में, उसको कहते हैं डी एस्केलेशन,
जी जी,
कि आपने अपनी जगह से वापस आना है और उस और वो उसका अगर वो आ जाते हैं टेबल पे तो उसका मतलब है वो कमजोरी की पोजीशन से आ रहे हैं। और ये बात जो है वो रशिया और उसके जो सीरियन गवर्नमेंट है जो जिसको वो सपोर्ट करते हैं वो इसको मुख्तलिफ रीड कर सकते हैं और करेंगे, वो इसको इस कमजोरी जानेंगे और इसलिए वो चाहते हैं कि पहले वो इस बात से एग्री हों कि वो हमें उनके ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा और जो भी स्ट्रगल होगी वो आईएसएस के खिलाफ मुत्तहिदा स्ट्रगल होगी अगर होगी, नहीं तो जो अगर वो स्ट्रगल बशारुल असद और उस ग्रुप के दरमियान है तो बशारुल असद को ये बात माननी पड़ेगी कि वो एक सियासी कुव्वत है और उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए।
ये बताइएगा प्रोफेसर साहब, आपके ख्याल में प्रेसिडेंट बशारुल असद, उनकी ज़ाहिरी हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे शरीक हैं, वो अपने लिए क्या इन मुज़ाकरात से हासिल करना चाहेंगे, क्या नेगोशिएट करना चाहेंगे अपने लिए?
जी, उनके लिए मेरे ख्याल में वो जो फ्यूचर का सीरिया है उसमें वो अपने लिए चाहेंगे कि कैसा रोल हो कि उनको पूरी तरह राइट ऑफ ना किया जा सके और उनके साथ उनका हशर वो ना हो जो कि सद्दाम हुसैन और उसके हवारियों का हुआ था इराक में। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा सहारा ढूंढा है रशिया का, क्योंकि रशिया उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है, बल्कि उनके इर्द गिर्द खड़ा है और वो इस वजह से चाहेंगे कि वो किसी किस्म की गारंटी जो है उनको मिल जाए या गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन हो। और ये बात जो है इसको उस इतला तक पहुंचने, उस इस बात को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एतमाद की एक फजा बहाल करनी पड़ेगी।
सही।
और वो अभी बहाल होना मुमकिन नहीं है क्योंकि उसमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे ख्याल में रशिया का बहुत कसूर है और इसमें कुछ कुछ जो है वो जिम्मेदारी अमेरिका की भी आती है क्योंकि अमेरिका को एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए ताकि उनके ट्रेन किए हुए और उनकी जो रिसोर्सेज इसमें वसाइल लगे हुए हैं वो जाया ना जाएं।
अली इमरान साहब, इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करने जाएंगे लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, बिलाशुबा जो स्टेटस को है उसके ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तब्दीली चाहिए होगी, मुज़ाकरात का मकसद भी यही होगा और दोनों फरीकें, क्या सदर बशार अल असद पीछे हटने के लिए तैयार होंगे एक बात, और उनके जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं रूस और ईरान, वो अपनी पोजीशन तब्दील कर सकते हैं? एक एनालिसिस ये भी है कि अगर रूस किसी वजह से अपनी पोजीशन थोड़ी सी भी तब्दील करता है सदर बशार अल असद की हिमायत के बरक्स, तो ईरान भी ये पोस्चर तब्दील कर लेगा। इस सूरत में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है शाम के अंदर और ये कम अज़ कम ये मुज़ाकरात जो हैं वो उस जानिब ले जा सकते हैं?
तरफ से इशारा नहीं आया लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रशिया की इन्वॉल्वमेंट है वो एक गेम चेंजर या गेम उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। उसने एक किस्म का सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें आइसिस को ठिकाने को ठिकाने उनको निशाना बनाना तो एक अच्छा रहा कि वो आइसिस की जो दहशतगर्दी थी वो खत्म होगी, लेकिन जो अपोजिशन और बशर अल असद के जो जितने भी मुखालिफिन हैं उनको टारगेट करने से वहां पे जो अपोजिशन है उसमें ये एक एहसास हो रहा है कि भाई ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है और हमारा जो मौकफ है या हमारे जो इंटरेस्ट है उनको कैसे सेफ गार्ड किया जाएगा। तो उसमें एक जो ये जो अदम तहफ़ है और एक अदम एतमाद की जो फजा है ये जब तक कम नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो हालिया इख्तलाफात और जो एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल बनी है उससे भी इस मुज़ाकरात पे एक असर होगा। और रशिया जो है वो अपने आप को सेफ करना चाह रहा है और अपने जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको वो समझता है कि वो जो मौजूदा बशर अल असद है की रजीम है उसको सपोर्ट करके और उनके मुखालफिन को दबा के उनको वो वहाँ पे अपना असर रसूख बरकरार रख सकता है। तो कोई ऐसा भी दोनों तरफ से कोई आया तो नहीं है कि इंडिया के वो अपने मौकफ में कुछ तब्दीली लाएंगे।
सही, हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस्लामिक स्टेट या दाएश, उसकी दुनिया भर में कार्रवाइयाँ या उससे मुतालिक एक्शन रिएक्शन, उन पर हम तबादले ख्याल करेंगे और एनालिसिस हम लेंगे। प्रोफेसर वकार अहमद भी इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे, चंद सेकंड की एक ब्रेक पहले।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
प्रोग्राम जहानरंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामिक स्टेट या दाएश, उसकी बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ, सरगर्मियाँ और मुख्तलिफ इलाकों में। इनिशियली हम इसका आगाज़ करेंगे उससे मुतालिक, दाएश से मुतालिक जो खबर है, बराह रास्त दाएश की सरगर्मियों से मुतालिक नहीं है, वो भारत से हम शुरू करते हैं। इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन भारत के अंदर वहाँ हुकूमत को ये इल्ज़ाम दे रही हैं कि वो दाएश या उसकी सरगर्मियों के इल्ज़ाम में या उसकी सरगर्मियों को सामने रखते हुए, उनकी आड़ में, उनके बकौल, वो वहाँ पर मुसलमान नौजवानों को, मुसलमान यूथ को वो टारगेट किया जा रहा है, उनको हदफ बनाया जा रहा है, और उनके ख्याल में, जिसके अंदर गैर मुस्लिम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, और उनका इल्ज़ाम ये है कि इसके अंदर जो हकूमत का ख़ासतौर पर एक नज़रियाती मशीनरी की हैसियत रखने वाली तंजीम है RSS, वो उसके पीछे कार फरमा है और वो मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा करती जा रही है। वो ये कहते हैं कि ये मुमकिन है कि चंद नौजवान वो इस्लामिक स्टेट या दाइश से, उसके नज़रियात से मुतासर हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनके लिए पूरे मुसलमान जो भारत के अंदर आबाद हैं उनको दहशतगर्द करार दिया जाए, ये बात नाकाबिल कबूल होगी। भारत के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात की अपने तौर पर तरदीद की है कि भारत के ऐसे कोई इरादे नहीं हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं है जिसमें मुसलमानों को हदफ बनाया गया हो, लेकिन दाएश के खिलाफ चौकन्ना स्टेट जो है वो रहना चाहेगी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वकार अहमद साहब, भारत से उनका बुनियादी ताल्लुक है, नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और ख़ासतौर पे जो कम्युनलिज्म है भारत के अंदर या भारत से वाबस्ता, उस पर खासा उन्होंने काम किया है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वकार अहमद साहब, इस रेफरेंस में पहले आप अपना एनालिसिस दीजिएगा, आपके ख्याल में जो रिएक्शन वहाँ से मुख्तलिफ इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुनों की जानिब से आ रहा है वो कितना आपको वैलिड नज़र आता है, कितना आपको जानदार नज़र आता है और कितना उसका जवाब है आपके ख्याल में आपके सामने?
देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस्लामिक टेररिज्म, या तो आप ISIS का थ्रेट कहें, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, वो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो कम है, वो हमेशा हिंदुस्तान में अभी रहेगा, क्योंकि उनकी वहाँ की कंडीशंस जो हैं वो बड़ी अजूबी हैं। हालांकि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई कास्ट एलीट और कम्युनल हिंदुत्व फॉर्मेशन जिसे कह सकते हैं उसकी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक थ्रेट रहेगा। पर ये कहना कि वहाँ पे ISIS बहुत बढ़ जा रही है और यूथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जा रहे हैं ISIS की तरफ, ये थोड़ा ये क्लेम बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और उस तो ये एक डेलिकेट बैलेंस को ख्याल रखते हुए हमें इस इशू को समझना होगा। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि वहाँ थ्रेट नहीं है, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ऐसी है जो इन चीजों पे, ये इनका आप कह सकते हैं विटामिन है इस गवर्नमेंट का, कि मुसलमानों को क्रिमिनलाइज करना और कहना कि ये टेररिस्ट ग्रुप है और दंगे फसाद जो है वो फैलाना। क्योंकि अगर आप किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है, अगर ये आप देखते हैं तो वो कम्प्लीटली रायट के बेसिस पे आई है, जहाँ पे इनके लीडर जाते हैं वो कम्युनल दंगे फैलाते हैं, कम्युनल दंगों के बाद पॉपुलेशन में पोलराइजेशन होता है, जो सेक्युलर हिंदू भी जो है वो कुछ समय कुछ वक्त के लिए ऐसा फील करते हैं कि कुछ इस्लामिक थ्रेट है इसलिए बीजेपी के लिए वोट कर देते हैं। तो ये इनका हमेशा स्ट्रैटेजी, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बाबरी मस्जिद इशू के टाइम से और उससे पहले से है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत इफेक्टिवली आरएसएस और बीजेपी लेट 1980 से इम्प्लॉय कर रही है। एक वक्त था जब बीजेपी के पास सिर्फ एक या दो सीट्स थे पार्लियामेंट में, वो 1980s तक, और फिर वो 90 सीट्स, मोर देन 90 सीट्स जो है वो जंप किए, क्योंकि ये कम्युनल पोलराइजेशन के थ्रू से ये आगे बढ़ी है। तो कम्युनल पोलराइजेशन जो है एक स्ट्रैटेजी बन गया, और ये हमेशा कहना कि दाइश आ जाएगी इंडिया में और इस्लामिक टेररिज्म बढ़ जा रहा है, ये इनका एक स्ट्रैटेजी है।
अली इमरान साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हम बहरहाल हुकूमत, भारत की हुकूमत, उसके अहदेदार, वो होम मिनिस्टर हूँ, वो भारत के इवन प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो इसको ऐसे किसी तस्वर को या ऐसे किसी तशख्स को मुस्तरद करते हैं जिसमें ये कहा जा रहा हो कि भारत की हुकूमत शायद जानबूझ के इस तरह के माहौल को वो परवान चढ़ा रही है। ये उनका एक नुक्ता नज़र है, चूँकि इस वक्त भारत से हमारे साथ कोई मौजूद नहीं खासतौर पर भारत की हुकूमत के नुमाइंदे, तो उनका जो नुक्ता नज़र है वो वाज़ह करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा। और यहाँ पर यह भी है कि नरेंद्र मोदी अपने इस इलेक्शन में ख़ासतौर पर उन्होंने जिस तरह मुसलमान कम्यूनिटी के साथ इंगेज किया, और ये रिपोर्ट होता रहा कि बहुत बड़ा हलका उनकी सपोर्ट कर रहा है, इसके बावजूद कि उनके साथ कुछ माजी के जो जुड़े हुए इवेंट्स हैं वो ज़्यादा खुशगवार नहीं समझे जाते हैं। इमरान, आपका एनालिसिस मुख्तसरन इस पे, यानी इसमें क्या डेलिकेट बैलेंस रखना होगा भारत की हुकूमत को?
जी, मैं समझता हूँ कि जो भारत अभी तक एक जो ये स्वीप से बचा हुआ है मिलिटेंसी से, असलियत संधि से, जो वहाँ पे मुसलमान आबादी है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये थम जाता है पाकिस्तान की सरहद तक, क्योंकि पाकिस्तान ने जब से इनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया और उसने स्टेप अप किया, तो अगले दिनों मैं आपकी तवज्जो इस तरफ कराना चाहूँगा कि ये एक दोनों ममालिक के दरमियान इंसेंटिव होना चाहिए कि आइसिस, जो कि अफगानिस्तान में भी अभी फुट होल्ड अपना बना रही है और वहाँ पे बल्कि ऑपरेट कर रही है, तो वो अपना खत्ते में अपनी कार्रवाइयाँ फैलाना चाहते हैं। नंबर टू, एक माहौल जो बनता है, जो अभी आपने भारत की बात की, वहाँ पे एक माहौल पिछले दिनों में जब से आरएसएस ने अपनी कार्रवाइयाँ और लिंचिंग जो मुसलमानों की, एक फीलिंग जो पहले बनाई जाती है डेस्परेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, और फिर विक्टिमाइज किया जाता है, वो तो किया गया, लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक बात जो सामने आई वो ये थी कि वहाँ के अदीबों ने, स्कॉलर्स ने जो अवार्ड्स को वापस करना शुरू किया और एक रेजिस्टेंस जो शो की कि ऐसी पॉलिसीज भारत में नहीं होनी चाहिए कि जिसके तहत आप एक तंग नजरी और अस्क्रियत वाली सोच और फिर इंतहाब संधि की सोच और फिर जो टेररिज्म बेशक उसे आप कह रहे हैं आरएसएस जो करती है मुख्तलिफ माइनॉरिटीज के खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे एक ये इस किस्म का भी, और वो जो मुसलमान कम्युनिटी है उनके अपने बिल्कुल जायज उनकी ग्रीवांसिस भी हैं, लेकिन वो एक उस नहज पे मैं समझता हूँ अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि एक माहौल जो बनाया जा रहा है या बनाया जाता है वो कुछ ये अस्क्रियत जो उनकी सोच है आरएसएस की या बजरंग दल या दूसरे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो एक मौजूद है, खतरा तो मौजूद रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों ने बड़े ही सब्र से और बड़े ही एक सोच और समझ और फहम के साथ इन सब चीज़ों को रिएक्ट किया, और जबकि उनके तेवर जो हैं, जो उनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं आरएसएस और उनके दूसरे, तो वो तो अच्छे नहीं है, लेकिन वहाँ की सोसाइटी,
लेकिन खैर यकीनन भारत की सोसाइटी को और हुकूमत को भी इस बात का तो एहसास होगा कि उसका तशख्स एक सेकुलर इंडिया का है पूरी दुनिया के सामने और उसको मेंटेन रखना है। मुझे चंद सेकंड दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और खासतौर पे जो हमारा फोकस होगा कि इस्लामिक स्टेट या दाइश वो अपने लिए मजीद क्या वेन्यूज तलाश कर रही है। लीबिया इत्तलात ये आ रही हैं, यहाँ तक कि सदर बराक ओबामा और वजीर दिफा उनको ये तहफ़ुज़ात हैं कि लीबिया जो है वो दाइश के जो वसत पसंदाना नज़रियात हो सकते हैं उसके अंदर अहमियत इख्तियार कर गया है और वो लीबिया में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। एक ब्रेक के बाद
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान उर्दू voa.com
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे दाइश उसका लीबिया तक फैलाओ या लीबिया के अंदर अपने ठिकाने और अपने तरबियती मराकज उनको मजबूत करने की कोशिशें। सदर बराक ओबामा इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं और इससे मुतनबिक कर रहे हैं। अमरीका के वज़ीर दिफा एश कार्टर ने यह बात की है और गुज़श्ता रोज़ पेंटागन ने भी इस पर तफसीली एक ब्रीफिंग दी थी। यहाँ पे तजिया ये है इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो बेस्ड है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो इराक और शाम में रिटेलिएशन की बाद फिजाई हमलों के बाद वहाँ से पिछले कई हफ्तों में साल 2015 के आखिर से कई हफ्तों के दौरान उनका जो बहाव है वो लीबिया की जानिब ज़्यादा है। मगरबी जो ममालिक हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कहती हैं कि कम से कम 5,000 की तादाद में दाइश के जंगजू वहाँ पे मौजूद हैं और पहुँच गए हैं, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 500 है और उसमें बड़े उनके रहनुमा भी शामिल हैं। और इस रेफरेंस में एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि लीबिया के अंदर ही अभी पिछले दिनों अमरीका की जानिब से किए गए एक मुबैना ड्रोन हमले में जो लीबिया का सरबराह था लीबिया के अंदर दाइश का उसकी भी हलाकत रिपोर्ट हुई है, जिससे ये साबित होता है कि उसके फुटप्रिंट्स ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद हैं बल्कि खासे गहरे होते जा रहे हैं, उस पर खासी तशवीश भी है। हमारे साथ हैं इस पे एनालिसिस के लिए प्रोफेसर वकार साहब, अली इमरान साहब और प्रोफेसर फैजान अक साहब आपसे जानना चाहूँगा लीबिया क्यों कर आपके ख्याल में एक बेहतर जगह हो सकती है दाइश के लिए या सिक्योर हो सकती है? वहाँ पे सिरते तक तो या उसके कुछ मुजाफात में उसकी प्रेजेंस की इतलात मिलती रही है पहले भी, लेकिन क्या वाकईतन उसका बहाव या उसका झुकाव अब लीबिया की जानिब अगर होगा तो उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस दाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है?
जी, सबसे जो जरूरी बात हम ये नोट करते हैं कि वो लीबिया क्यों पहुंचे और कैसे पहुंचे, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर वो लीबिया में कदम जमा लेते हैं तो लीबिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि उससे आपको तमाम अफ्रीका में रास्ते मिल जाते हैं, और अफ्रीका के जो मुल्क हैं या उनकी जो रियासती निज़ाम है वो इतना मजबूत नहीं है। फिर भी मशरिक़ वस्ता में हम देखते हैं कि रियासती निज़ाम जो है अभी भी खासा मजबूत है। सरहदें जो हैं उन पे फौजें मौजूद हैं, लोगों के पासपोर्ट चेक किए जाते हैं और उनका बहुत करीबी ताल्लुक है मगरबी इत्तेहादियों के साथ, जैसे जॉर्डन है, लेबनान है, इसराइल है, इजिप्ट है, और वो और जो उनको अगर पनपना है और उनको आगे बढ़ना है या उनको अपना असर रसूख बढ़ाना है तो ऐसे मुकाम पर जो जहाँ से वो उनको मौका जब खतरा हो तो वो भाग जाएं और जब खतरा ना हो और फिर इकट्ठे होकर कुछ करें, तो इसमें लीबिया जो है उनका एक नेचुरल जगह बनती है और वहाँ पर ऑयल रेवेन्यू जो है उससे भी वो फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं इस कड़ी को एक और कड़ी से मिलाना चाहता हूँ आपकी इजाजत से आधे मिनट में। वो ये है कि हम पहले रशिया की बात कर रहे थे और उसकी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे, तो मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि ये जो कई ममालिक जो उस एरिया में हैं उनका जो इंटरेस्ट है, जो मुफाद है, वो ये नहीं है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए। हम ये देखते हैं कि जब रशिया का हम बिहेवियर देखते हैं शाम में सीरिया में, तो हम देखते हैं वो एक चैप्टर है अफगानिस्तान में इसके बिहेवियर का, और उसमें रशिया आईसिस के बहाने से एक तो उन रेबल्स को खत्म कर रहा है जो बशार अल असद के खिलाफ हैं, और उसके साथ साथ वो जो है वो तुर्की में जो है वो तुर्की को सजा देना चाहता है एक तो जहाज के गिरने की, और वैसे भी उनको वो राइवल समझते हैं तो उनके साथ वही फार्मूला चल रहा है। तो ये आईसिस के खिलाफ हमें खासकर मगरबी ममालिक को और अमरीका को सख्ती से रशिया के बिहेवियर का नोटिस लेना चाहिए, और क्योंकि जहां तक बशार अल असद की हुकूमत का ताल्लुक है जो कि इसकी एक ऐसी वजह है जिसको कहते हैं कि बुनियादी वजह है आईसिस की फॉर्मेशन की, अगर इराक की इन्वेजन जो है अमेरिका का उसको अगर आप एक तरफ रखते हैं, तो हम जब ईरान से, मेरा अपना ये अंदाजा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब ईरान से अमेरिका की गुफ्तगू हो रही थी तो बशार अल असद जो हैं उनका तो फैसला हो गया टेबल पे कि ईरान जो है वो बतदरीज अपनी सपोर्ट विदड्रॉ करेगा बशार अल असद से, ये तो एक तय बात है। लेकिन रशिया की वजह से हम देखते हैं कि ये जो वायरस है आईसिस का ये सिमट नहीं रहा, ये फैल रहा है, और ये इस बात का हमको खासकर मुस्लिम ममालिक को और खास अमरीका और उसके हवारियों को जिनको सबसे ज्यादा खतरा है उनको ये इससे सख्ती से निपटना चाहिए।
प्रोफेसर वकार साहब, आपका एनालिसिस लीबिया ये कितना आपके ख्याल में फ्लेक्सिबल है या एरिया है दाइश के लिए, या ऐसा एरिया जहाँ पे वो अपने आप को ज्यादा महफूज ख्याल करे?
पर बात यह है कि वहाँ कॉन्टेस्टेशन जो है अभी बढ़ने वाला है. अफ्रीका का कंट्रोल जो है अभी कॉन्टेस्टेशन जो है इसेंशली एक तरफ है अलकायदा, दूसरी तरफ है आईसिस. तो नॉर्थ अफ्रीका में किसका ताकत ज्यादा होगा वो अभी खुल के सामने आने वाला है. अभी जो बुर्किना फासो में जो हमले हुए जिसमें पता चला कि मुख्तार बिन मुख्तार जो है वो कई बार डिक्लेयर कर दीजिए कि वो मर चुके हैं, पर वो जो है बार बार वापस आ रहे हैं और उनको अभी फिर से अपना ताकत जमाना है. वो उनकी उनकी काफी डिफरेंसेस हो गई थी अलकायदा से. वो शायद 2-3 साल अलकायदा में नहीं थे, अब वो वापस आ गए हैं और वो उनको दिखाना है कि देखो अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में अलकायदा अभी भी मजबूत है. क्योंकि अलकायदा का जो है हम उतना नाम नहीं सुन रहे जितनी आईसिस की हम लोग सुन रहे हैं. पर बुर्किना फासो में जो अटैक हुआ है उसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली अलकायदा का हाथ था. लीबिया में जहां तक बात है तो अलकायदा और आईसिस के बीच में इक्वल कॉन्फ्रंटेशन है. और लीबिया में ये दोनों पावर इसलिए ताकतवर हुई है क्योंकि वहां पावर वैक्यूम हो गया है. ये तो वेस्ट का ही डिसीजन था कि गद्दाफी को हटाया जाए और उसके बाद इनसेसेंट बॉम्बिंग हुई वहां पे, फ्रांस का रोल था. पर अब जब पावर वैक्यूम हो गया तो वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की प्रेजेंस है नहीं, तो इसलिए वहां पे ये दोनों ताकतों का, दोनों टेररिस्ट ग्रुप का हम जो राइज कहते हैं वो देख रहे हैं. तो अफ्रीका में जहां भी, नॉर्थ अफ्रीका में जहां जहां भी पावर वैक्यूम है वहां पे
मिलिटेंट
आने कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. और सेकेंड डिमेंशन जो प्रॉब्लमैटिक और है, अलकायदा और आईसिस दोनों आपस में शो ऑफ करना चाहेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है. तो वहाँ नॉर्थ अफ्रीका में टेररिस्ट इंसिडेंट्स और वायलेंट इंसिडेंट्स अभी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है.
अली इमरान साहब, आपका जायजा.
लीबिया तो एक परफेक्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे के जो अस्क्रियत चंद और दहशत गर्द तंजीमें हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ और अपना असर बढ़ा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल केओस है, मुख्तलिफ हुकूमतें हैं और सिक्योरिटी एक वैक्यूम है. फिर उसके बाद एक किस्म की लाकानूनीत और अदम अमलदारी और गैर यकीनी की जो सूरत हाल है उससे ये फायदा उठाते हुए अभी आईसिस ने, जैसा कि हमने देखा कि हमें अफगानिस्तान में, शाम में, इराक में यही हुआ कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सारे जो अवामिल हैं इनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाते हैं. अभी अमेरिका ने जो यहाँ पे इनके डिफेंस सेक्रेटरी एश कार्टर और सदर बराक ओबामा ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उनको कहा है कि इस पे खास रखी जाए नजर.
प्रेजेंस है, अब मिलिट्री प्रेजेंस भी है. कल कंफर्म किया पेंटागन ने कि महदूद तादाद में सही लेकिन अमरीकी फौज लीबिया के अंदर पहुंच गई है और मकसद ये है कि वहां पे अपने ऐसे पार्टनर्स तलाश किए जाएं जो दाइश के खिलाफ निमटने में कोई बड़ी कैंपेन मुमकिन तौर पे शुरू होने वाली है उसमें शरीक हो सकें.
जी, और अमेरिका के पास जैसा कि नवंबर में जो एक वहाँ के आईएसआईएस या दाइश के एक मिलिटेंट लीडर के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उससे भी जाहिर होता है. और ये जो इनका एक छोटा सा डेलीगेशन है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, वो असेस कर रहे हैं कि ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, किसका और कहाँ पे किसकी मौजूदगी ज्यादा है. और ये एक वहाँ पे एक टेरिबल फ्यूल मिक्स जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है. और इसमें एक ये बैटल फील्ड लीबिया जो है बना रहेगा जब तक वहाँ पे पॉलिटिकल एक सॉल्यूशन ही निकलता, सिक्योरिटी वैक्यूम नहीं हल होता वहाँ पे.
और मेरे पास अब आखिरी 3 मिनट हैं और मैं सिर्फ 30-30 सेकंड दूंगा, 40-40 सेकंड अपने मेहमानों को. बात हम करेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, उसकी हालिया दिनों में बड़े तवातर से वाकयात रूनमा हुए हैं. आज भी एक मस्जिद के अंदर उसको टारगेट किया गया है, कम से कम 3 अफराद उसमें हलाक हुए हैं. दाइश को वहाँ पे भी इसका जिम्मेदार समझा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो दाइश को समझते ये हैं कि उसके पीछे जो फिलासफी कार फरमा है उसको सऊदी अरब की तरफ से या उसकी नजरियाती हिमायत हासिल है. तो क्या दाइश सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बन रहा है या बन सकता है पोटेंशली, ये एनालिसिस दीजिएगा. मैं जानता हूँ कि ये बहुत वसी मजमून है, लेकिन मुख्तसरन प्रोफेसर फैजान साहब.
जी, सऊदी अरब को आईसिस से पहले दिन से ही खतरा था और सऊदी हुकूमत इस बात से बहुत वाकिफ है क्योंकि ये उनके लिए कंधे मुकर्रर है इस तरह से कि वो इससे पहले अलकायदा को एक्सपीरियंस कर चुके हैं. और जो पेचीदगी हम देखते हैं मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात के हवाले से, तो ऐसी जितनी भी ये वाकयात हो रहे हैं इनकी बहुत ठंडे दिल से और थॉरो इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च होनी चाहिए कि कहां से ये बात आ रही है और किसने करवाया.
वकार अहमद, सऊदी अरब, इस्लामिक स्टेट और सेक्टेरियन वायलेंस.
चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जो दाइश की फिलोसफी है बहुत हद तक वहाबिज्म और सऊदी अरेबिया के फिलोसफी से कंफर्म करता है। डिफरेंस ये है कि आईसिस या अलकायदा जो है सऊदी मोनार्क को एक्सेप्ट नहीं करते एज द हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड या हेड ऑफ सऊदी अरेबिया। सो ये डिफरेंस है कि परेशान करेंगे सऊदी अरेबियन किंगडम को और सऊदी अरेबियन किंगडम को इससे दाइश या इवन अलकायदा से काफी खतरा। जहां तक
32nd अली इमरान
शिया पॉपुलेशन का ये है तो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, पर्टिकुलरली ईरान और अमेरिका के बीच में जो सुलह हुआ, दुनिया के साथ जो सुलह हुआ वो सऊदी अरेबिया एक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए वहाँ पे।
इमरान अब आपका टाइम और कम हो गया, 20 सेकंड।
देखें जी, जहाँ पे ऑयल होगा वहाँ पे ये आईसिस और तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलिटेंट ये जाना चाहेंगी, वहाँ पे असर रसूख बढ़ाएंगी और वहाँ पे जो डिसग्रंटल्ड और फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के उनको अपनी तरफ करना चाहेंगी। तो आईसिस का तो सारा जो सामने नजर आ रहा है कि वो अपना पूरे इलाके में खित्ते में वो फैलाना चाहता है अपनी कार्रवाई।
बहुत शुक्रिया अली इमरान आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर फैजान साहब आपके भी हम मशहूर हैं और प्रोफेसर वकार अहमद आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। असद हसन को और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।